पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 16 ओ सिद्धेव ओ सिद्धेव ओ सिद्धेव ओ सल्लक्षणिकं सन्मात्रं मायतः स्वतः सिद्धं तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च। यह ग्रंथ राष्ट्रीय पंचाध्यायी है और उसको पढ़ते हुए हम आए हैं पृष्ठ संख्या 43 पर। 43 179 तक की गाथा अपनी हुई थी। श्लोक 180 नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। कल से पर्याय की बात चल रही है। आप ठीक कल नहीं थी, थी। द्रव्य और गुण की बात हो गई है। पर्याय पर्याय कैसी है तो 39 पेज निकालना। 165 गाथा के नीचे लिखा है तो पर्याय कैसी है पेज नंबर 39। ये क्रमवर्ती है, अनित्य है, व्यतिरेकी है, उत्पाद वैरूप है और कथनचित द्रव्य स्वरूप होती है। अब इसका एक एक का विस्तार से वर्णन चल रहा है। व्यतिरेकी के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। व्यतिरेक यानी क्या? हाँ, जैसे हमने ये दो एक के बाजू में एक दो रखी तो यह है, यह वह नहीं, यानी जो है वो वही है, वह दूसरा नहीं है, जो दूसरा है वो दूसरा है, वो पहला नहीं है, इसको कहेंगे व्यतिरेक। अभी वो उन्होंने देश व्यतिरेक भी पहले घटित किया था कि तो प्रदेशों में जो एक प्रदेश है वह दूसरा नहीं, दूसरा है वह पहला नहीं, तीसरा नहीं, इस तरह से उसको देश व्यतिरेक कहा। उन प्रदेशों का जो क्षेत्र है वो भी एक क्षेत्र दूसरे रूप नहीं है तो उसको क्षेत्र व्यतिरेक कहा। काल व्यतिरेक में जो अनादि अनंत हम देखें, काल में प्रत्येक समय का जो पर्याय है वो भिन्न भिन्न है, एक पर्याय वो वही है वो दूसरी नहीं है, उसको हमने काल व्यतिरेक। यहाँ पर भाव व्यतिरेक में गुणों का एक दूसरे में अभाव नहीं लिया, क्योंकि गुण कैसे हैं, किसी एक गुण में सभी अनंत गुण गर्भित है, इसलिए भाव व्यतिरेक में गुणों के जो अभिभाग प्रतिच्छेद है वो एक अभिभाग प्रतिच्छेद दूसरे रूप नहीं है, उसको भाव व्यतिरेक। अब ये व्यतिरेक की बात विस्तार से उन्होंने बताई, फिर क्रम की बात बताई। क्रम का अर्थ एक के बाद एक के बाद एक के बाद होना, वो है क्रम। जब क्रम सिद्ध होगा तब उसमें व्यतिरेक सिद्ध होगा, इसलिए क्रम को कारण कहा और व्यतिरेक को कार्य कहा। यहाँ तक की अपनी बात हुई थी। अब यहाँ 180 नंबर पढ़ेंगे हम। तदिदम यथा सजीवो देवो मनुजात भवन थाप्यन्य कथमन्यथात्वभावं न लभेत सगोरसोऽपि नया। वह पूर्व पूर्व भाव का विनाश और उत्तर उत्तर भाव का उत्पाद इस प्रकार होता है, यानी पूर्व पर्याय का व्यय और नए पर्याय का उत्पाद। जैसे एक दृष्टांत देकर समझाते हैं, जो जीव पहले मनुष्य पर्याय में था वही जीव मरकर देव पर्याय में चला, वही जीव ने जीव वही का वही लिया है, पर्याय बदल। मनुष्य जीव से देव जीव कथनचित भिन्न है, क्योंकि वो पर्याय के साथ अभेद करके उस पूरे द्रव्य को समझा रहे। मनुष्य जीव लिया यानी जीव की मनुष्य पर्याय ने उस पर्याय के साथ वाला वो जीव द्रव्य, मनुष्य जीव देव जीव से कथनचित भिन्न है। जीव तो वही का वही है, जो मनुष्य जीव है वो अभी देव जीव हुआ है। जिस प्रकार दूध से दही कथनचित अन्यथा भाव को प्राप्त होता है, ये गोरस की ही पर्याय, दूध कहो दही कहो छाछ कहो सारे सब कुछ गोरस कहेंगे, परंतु उसमें भी भिन्नता है। तो कथनचित अन्यथा भाव को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह भी कथनचित अन्यथा भाव को क्यों नहीं प्राप्त होगा, तो कहते अवश्य ही होगा। अन्यथा भाव यानी उसमें कुछ डिफरेंस है, वहां वो अन्यथा भाव है, एक पर्याय वो अपने रूप है, दूसरे रूप नहीं है, थोड़ा कुछ ना कुछ उसमें अन्यथा भाव होता ही है। अब इस पर फिर शंका 181 और 82 दो श्लोकों में शंका चलेगी। पेज नंबर 43 श्लोक नंबर 181 ननु चैवं सत्य सदपि किंचित् वा जायते सदैव यथा सदपि विनश्यत्य सदैव सदृशा सदृशत्व दर्शनादिति चेत्। देखो क्या कह रहे हैं, इति चेत चाहिए, चेन हुआ है, चेत चाहिए, इति चेत, हाँ इति चेत, क्योंकि लास्ट में नो नहीं है, चेत। देखो क्या कहते हैं, ननु चैवम सती, ऐसा होने पर असद अपि किंचित वा जायते, असद की भी उत्पत्ति होने लगेगी, सतैव यथा यानी सत की भी है असत की भी, ऐसा भी हम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा। इस प्रकार की भिन्नता स्वीकार करने से मालूम होता है कि सत की तरह कुछ असत भी पैदा हो जाता है। देखो द्रव्य को नहीं लेते हुए अकेले पर्याय की बात करते हैं, असत की उत्पत्ति होती है ऐसा कहते हैं, ये शंकाकार पूछ रहे हैं। और असत की तरह कुछ सत पदार्थ भी विनष्ट हो जाता है, यानी सत का विनाश हो जाता है और असत की उत्पत्ति होती है, ये उसका उसकी शंका है। सेकंड लाइन में लिखा ना सदपि विनश्यति असति वह, तो समानता और असमानता के देखने से ऐसा प्रतीत भी होता है, यानी वो मात्र पर्याय की तरफ देख रहा है और द्रव्य की बात कर रहा है, वो कि असत द्रव्य की उत्पत्ति होती है, द्रव्य तो हमेशा सत है, उसको स्वीकार नहीं करते हुए उसकी शंका चल रही है। अभी और ये शंका उसकी चल रही है आगे भी 182 में भी, सदृशोत्पादो ही यथा स्यादुष्णः परिणमन यथा वह्नी स्यादित्य सदृश जन्मा हरितापीतं यथा रसाल फलम्। दो दृष्टांत वो दे रहे शंका का, एक अग्नि का और एक आम्रफल का। देखो वो कहता है किसी किसी का समान उत्पाद होता है और किसी किसी का असमान उत्पाद होता है, उसके लिए उसका दृष्टांत है शंकाकार का। अग्नि का जो उष्ण रूप परिणमन होता है वह उसका समान उत्पाद है, यानी उष्ण उष्ण उष्ण, और कच्चा आम पकने पर हरे से पीला हो जाता है, वह असमान यानी विजातीय उत्पाद है। इस प्रकार कुछ असत का उत्पाद होता है, कुछ सत का नाश होता है, क्या ये प्रश्न पूछ रहे। अभी इसको शंका का ही भावार्थ बता रहे हैं, वस्तु के प्रति समय होने वाले परिणमन को देखकर वस्तु को ही उत्पन्न और विनष्ट समझने वालों की यह शंका है, यानी असत वस्तु ही उत्पन्न हुई और सत वस्तु का ही नाश हुआ, ऐसी उसकी शंका है। यानी मात्र परिणमन को देखा, उसने वस्तु को देखा नहीं। समाज 183 से 192 तक। नैवं यतः स्वभावात् असतो जन्मन सतो विनाशो वा उत्पादादित्रयमपि भवति च भावेन भावतया। उपर्युक्त जो शंका की गई है वह ठीक नहीं है। क्या कहा था, असत का उत्पाद और सत का विनाश कहा था, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक स्वाभाविक बात है कि न तो असत पदार्थ का जन्म होता है और न सत पदार्थ का विनाशी होता है, ये तो बिल्कुल नियम है, कहो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, कहो सहज बात है कि असत पदार्थ का कभी जन्म नहीं हुआ, जितने द्रव्य है अनादि अनंत तो उतने ही रहेंगे, कोई भी नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सत द्रव्य को कह रहे हम, और न कोई जो सत रूप है पदार्थ उसका विनाश ही हो सकता है। کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں اسیتو نام کا گن ہے، اسی لیے اس کو ست کہہ رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں، کیا نیم بتایا؟ نہ تو اسد پدارتھ کا جنم ہوتا ہے، نہ اس کی اتپتی ہوتی ہے، اور نہ ست پدارتھ کا وناشی ہوتا ہے. جو اتپاد ویہ دروے ہوتے ہیں وے بھی وستو کے ایک بھاو سے بھاوانتر روپ ہے. بھاو ایک بھاو سے بھاوانتر، انیہ بھاو کو وستو پراپت ہوتی ہے. وستو قائم رہتے، ہاں پر یہ پلٹتی، وستو قائم رہتے ہوئے ایک بھاو سے دوسرے بھاو کو پراپت ہوتی ہے. بھاوارتھ جو پدارتھ ہے ہی نہیں، وہ تو کہیں سے آ نہیں سکتا. جس کو اسد کی اتپتی نہیں، جو ہے ہی نہیں، جس کی ہاں ودیمانتا ہی نہیں، وہ پدارتھ ہے، وہ دروے کہیں سے آ نہیں سکتا. اور جو اپستھت ہے وہ کہیں جا نہیں سکتا. کیا نتین بھائی آپ حاضر ہو، اپستھت ہو کہ گھر میں ہو؟ اپستھت ہے. تو یہاں کی بات نہیں، اس وشو میں اپستھت ہو تو کہیں جا نہیں سکتے، کبھی آپ کا وناش نہیں ہو سکتا. اس لیے نہ تو نوین پدارتھ کی اتپتی ہی ہوتی ہے اور نہ سب پدارتھ کا وناش ہی ہوتا. اتنی بات بھی بالکل، جس کو کہتے ہیں ٹھوس ڈنکے کی چوٹ، ہم سویکار کریں گے تو کتنی آکولتا کم ہو جائے گی. کیونکہ پرتیک کو مرنے کا ڈر ہے، میں مر جاؤں تو میرا وناش ہو جائے. تو ہندو ہر ایک وستو میں پرتی سمے بھاو سے بھاوانتر ہوتا رہتا ہے، یہ ہم نہیں چاہتے. یعنی کبھی کبھی چاہتے، کبھی کبھی نہیں چاہتے بھاو سے بھاوانتر ہو. کیونکہ جو ابھی پراپت سنیوگوں میں سنتوشت ہو کر بیٹھے ہیں، اس کو نہیں لگتا کہ اس میں کچھ بھاوانتر ہو جائے. ہاں روگی ہے تو نروگی ہونا چاہتا ہے، غریب ہے تو شریمنت ہونا چاہتا ہے. وہ تو سنیوگ کی اپیکشا، وہ تو اس کا بھاؤ بھی نہیں ہے سج دیکھو تو. تو کہتے بھاؤ سے بھاوانتر کیا ہے، اس کا وہ خلاصہ نیچے کیا جاتا. ہاں ہاں وہ بھوپال والا لڑکا، ہاں
وہ کہہ رہے ہیں کہ
دروے وید کی، اور وہ بھی کچھ ہارمونز لیے، باہر کی کچھ رچنا بدل گئی، پر باہر پروش دیکھا تو کچھ گرباشے بنے گا کیا اس کے اندر؟ ایسی تو کچھ نہیں رچتا، نہ ہی اس کو کوئی گرب رہے گا. یہ تو کچھ چیزیں دیکھ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کیا ہے، نیا نیا ابھی سیکھ رہا ہے نا، اس کو پرشن آ رہے تھے. یگ عمر کا ایک لڑکا آتا تھا،
وہ اپنے کو نرت کرنا چاہتا تھا، دو تین ایسے فالتو پرشن پوچھ لیا اس کو. اچھا بھیا بھاؤ وید کی بات چل رہی ہے، ادروے وید کی بات چل رہی ہے، شریر نہیں میں ہوں ایسا
کیا ہے ابھیاس نہیں. اور پھر ایسا لگتا ہے نا، میں بہت پڑھا لکھا ہوں یا باہر بہت کچھ ہوشیار ہوں، بہت بڑا بزنس چلاتا ہوں، تو میرے جیسا کوئی نہیں. ستر
ٹھیک ہے،
ہاں کیوں نہیں سن رہے، بیسک ہی نہیں نا اس کا، کلیئر نہیں ہے بچہ. وہ اپنے سے ہوگا اس کے، اس کا خلاصہ دیکھو. ابھی 184 نمبر کی گاتھا کریں گے شلوک. ایم ارتھ پوروم یو भावः सोऽप्युत्तरत्र भावश्च भूत्वा भवनं भावो नष्टोत्पन्नो न भाव इह कश्चित्. इसका यह अर्थ है, पहले जो भाव था वही उत्तर भाव रूप हो जाता है, होकर होने का नाम ही भाव है. सर्वथा नष्ट और उत्पन्न कोई भाव नहीं होता, भावार्थ, आकार का नाम ही भाव है। वस्तु का एक आकार बदल कर दूसरे आकार रूप हो जाए, इसका नाम भाव से भावांतर कहलाता है। हर एक वस्तु में प्रतिक्षण इसी प्रकार एक आकार से आकारांतर होता रहता है। किसी नवीन पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती और न किसी सत पदार्थ का विनाश ही होता है।
पर्याय की अपेक्षा से सोच रहे हैं, वैसे यहाँ नहीं होता होगा। आकार का नाम ही भाव लिखा ना,
अभी हर एक वस्तु में प्रतिक्षण इसी प्रकार एक आकार से, यानी आकार नाम होगा तो पर्याय की बात होती
है। उस जीव का अज्ञान था, वो ज्ञानी हुआ तो उसका भाव उसे भावांतर हुआ, ऐसा होता है। वो बात ध्यान नहीं ले रहा, ऐसा आगे यहाँ के जो भावार्थ लिखा है उस पर से ये प्रतीत होता है कि आकार का नाम ही भाव है, यानी वस्तु का एक आकार बदलकर दूसरे आकार रूप हो रहा है, इसका नाम भाव से भावांतर कहलाता है। लेकिन सिर्फ आकार
यहाँ तो आकार की बात कर रहे हैं,
इससे पहले तो लेकिन आकार थोड़ी चेंज होता है, अन्य भी चीज चेंज होती है ना, भी उसको सब चीज होता है।
वो तो बाद में बताएंगे,
वो उसकी बात नहीं, यहाँ तो आकार को ही भाव से भाव।
पहले तो ये बात आकार में बता रहे, आगे चलकर तो अन्य की बात करेंगे।
देखेंगे ना, हमने तो ऐसा समझा था कि भाव से भाव बदल गया, मेरे श्रद्धा नहीं थी अभी श्रद्धा हो गई, भाव अंतर हुआ, ऐसा हमने सोचा था। यहाँ पे तो बोर्ड कर
दिया,
अरे मैं तो ऐसे बैठी थी, ऐसा किया तो आकार
नहीं, यहाँ तो वही
ऐसा किया आकार।
यहाँ तो मनुष्य और देव की बात कर रहे हैं, परंतु उसमें सूक्ष्म एक एक समय का भी भाव ले रहे
हैं। ये बात तो चले,
अभी यहाँ तो सारा जो बता रहे हैं ना, वो तो उसके आकार की अपेक्षा बात कर, अभी जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे फिर समझेंगे। वैसे तो पर्याय में भी वही बात घटित होती है, वस्तु एक अवस्था से अवस्थांतर को प्राप्त हो जाती है, यहाँ भाव से भावांतर को उन्होंने आकार में घटित किया। एक सौ पचासी, दृष्टान्त परिणामी जल प्रवाहो येव पूर्वस्मिन् उत्तरकाले तथा जलप्रवाह सैव परिणामी। दृष्टांत के लिए जल का प्रवाह है, जो जल का प्रवाह पहले समय में परिणमन करता है वही जल का प्रवाह दूसरे समय में परिणमन करता है। ये जल का प्रवाह अभी हम देखते हैं ना, नदी है एक जगह, कुछ अन्य सा वो प्रवाह दिख रहा है, आगे चलकर वही शेप उसका बदलता है। पानी तो बदल, पानी तो बढ़ा लेना कम हुआ है, उतना को उतना है, फिर भी वहाँ उसका जो कुछ प्रवाह है, उसका जो आकार वगैरह वो अलग दिखता है। फिर कहीं डेप्थ है तो उसका नैरो हो जाता है उसका, कहीं कहीं तो वो बहुत ऐसा विस्तार हो जाता है, पानी तो उतना ही था।
पर्याय का आकार बदलता है,
द्रव्य का आकार भी, वो आकार भी एक पर्याय है, वो आकार की अपेक्षा यहाँ समझा है।
पर्याय की अपेक्षा आकार बदल गया, मतलब पर्याय ही बदल गई है ना।
हाँ वही तो, परंतु आकार वाले पर्याय की बात कर रहे हैं, प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से बात चल रही है।
अभी दूसरी भाषा में कुछ व्यंजन पर्याय की बात यहाँ,
अब शायद तो बताएंगे आगे चलकर। पहले तो ये जो स्थूल रूप से जो है वो ख्याल में आने के लिए शायद उसकी आधार से समझाते होंगे। ये तो जल का प्रवाह तो आसान है ना समझने के लिए। 186 पर, यत्र विसदृशत्वं जातेरनतिक्रमाक्रमादेव अवगाहन गुण योगा देशांशानां सतामेव। यह जो द्रव्य की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भिन्नता यानी असमानता दिखती है, वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़कर क्रम से होने वाले देशांशों के अवगाहन गुण के निमित्त से ही दिखते हैं। अवगाहन लिया नहीं, वो व्यंजन पर्याय की बात लिया, देशांश यानी प्रदेश, उसके यानी प्रदेशों ने अन्य अवगाहना धारण की, यानी बाह्य उसका फैलाव जो विस्तार है, प्रदेश बड़े नहीं ना कम हुए, उसकी अवगाहना बदल गई, तो उसके निमित्त से ये असमानता दिखाई दे रही है। पहला दृष्टांतो जीवस्य लोका संख्यात मात्र देशास्यो आनिर्वृद्धिर्तेषां अवगाहन विशेषतो न तु द्रव्यान्। विशेषतो और न में स्पेस चाहिए और न और तू में भी स्पेस चाहिए। अवगाहन विशेषतः न तु द्रव्यात्, द्रव्य से नहीं होती है, अवगाहन विशेषता से होती है। देखो अर्थ देखेंगे, दृष्टांत इस प्रकार है, एक जीव के ये असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें लोक प्रमाण असंख्यात करना, लोक प्रमाण के बाद एक ऐसा आयो करके आगे असंख्यात को राउंड कर दो, क्या कहते हैं, एक जीव के यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण लिखे ना, वो लोक प्रमाण असंख्यात चाहिए, क्योंकि ऊपर श्लोक में लोका संख्यात लिखा है, उसमें तो समझ नहीं, जैसे ये लोक असंख्यात है, परंतु लोक प्रमाण असंख्यात ऐसा चाहिए। श्लोक में तो शब्दों के हीना दिखता से वो अलग अलग एडजस्ट कर लेते हैं। तो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं, उनकी हानि अथवा वृद्धि केवल अवगाहन की विशेषता से होती है, यानी उसका कितना विस्तार हुआ है, फैलाव कितना हुआ है, उसी की अपेक्षा से, यानी जो संख्या है प्रदेशों की, उसमें एकमात्र की बढ़ोतरी या हानि नहीं होती, उसने कितना जगह कितनी जगह रोकी है, जिसको अवगाहन कहते हैं, उसकी अपेक्षा से हीनाधिकता होती है, द्रव्य की अपेक्षा से नहीं होती। भावार्थ, जीव के जितने भी असंख्यात प्रदेश हैं, वे सदा उतने ही रहते हैं, न तो उनमें से कभी कुछ प्रदेश घटते हैं और न कभी कुछ प्रदेश बढ़ते हैं, किंतु जिस शरीर में जितना छोटा या बड़ा क्षेत्र मिलता है, उसी में अपने कारण से, शरीर के कारण से नहीं, अपने स्वयं की योग्यता से, उसके अनुसार संकुचित अथवा विस्तृत हो जाते हैं। चींटी के शरीर में भी वही असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा है और हाथी के शरीर में भी वही असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा है। आत्मा दोनों स्थानों में उतना ही है जितना कि वह है, कितना है तो असंख्यात प्रदेश, केवल एक आकार से आकारांतर रूप हो गया है, आकार से आकारांतर को ग्रहण करने की अपेक्षा से ही आत्मा के प्रदेशों की हानि वृद्धि समझी जाती है। वहां कहेंगे भी संकोच विस्तार हानि वृद्धि, परंतु वो तो आकार की अपेक्षा समझ, वास्तव में उसमें किसी प्रकार की हानि अथवा वृद्धि नहीं होती, इसे ही हानि वृद्धि कहो, उत्पाद व्यय कहो, विभिन्नता कहो, विसदृशता कहो, एक ही बात है, वह आकार से आकारांतर शरीर के कारण से नहीं हुआ है, किंतु उस समय के स्वकाल की योग्यता से हुआ है। नहीं तो निमित्त से कार्य होता मानना पड़ेगा, इसके अपने स्वयं की उस काल की योग्यता से, क्योंकि प्रदेशत्व गुण का परिणमन है, कितना आकार धारण करता है वो उसके अपने कारण से, अपनी योग्यता से होता है।
देर होती है कि उद्गम का जो कुछ परिणाम आकार रुचि जो हो रहा है वो उसके कारण जीव का जो कुछ आकार आत्मा प्रदेशों का जो हो रहा है वो स्वयं उसके कारण शरीर के कारण आत्मा के प्रदेशों का आकार नहीं बदलता है। आकार शरीर के कारण से उद्गम बनाओ यानी शरीर का आकार नहीं बदलता यानी कोई मोटा हो जाए मेरे जैसा तो उसके आत्मा के प्रदेश कैसे फैल जाते हैं दुबला हो गया दोनों की योग्यता अपने अपने से ये बात होता है।
अब 188 में इस सेकंड लाइन में क्या है आपके पास दूसरी पुस्तक है ना सेकंड लाइन में अतिरिक्त न्यूनमा ग्रह भाजन आगे क्या लिखा है भाजन के आगे क्या
विशेषत्व
नि कहाँ लिखा भाजन निविशेषत्व निविशेषत्व
निविशेष निभाजन विशेषत्व
भाजन वो तो नहीं चाहिए वो का भी चाहिए परंतु भाजन और वो विशेषता के बीच में नी नहीं है ना
वो भी नहीं है
वो तो नहीं चाहिए मैंने वो को निकाल कर भी लिखा है वहाँ
नी भी नहीं चाहिए
हाँ तो नी वो लिखने लिखा है उसके बदले भी लिखो केवल नी और वो नहीं चाहिए उसके बदले भी रस्व भी विशेष मतलब विशेष का भी
दो शब्दों की जगह
हमने केवल वो निकाल के वी लिखा था मैंने यहाँ पर मेरे इसमें
निकाल के
नी भी निकालना और वो भी निकालना और वी नहीं भाजन विशेषत्व भाजन की विशेषता से भाजन यानी पात्र की विशेषता से वो पहला भी 181 में क्या था चेन था कि चेत था हमने चेत लिखा है अपने मन से लास्ट शब्द चेत हमने ठीक किया है करेक्शन हमने उतना संस्कृत आता है
वन एट वन
हमने किया था ना चेन के बदले चेत होना चाहिए
181 ये पहले अपन ने रिपीट किया है आपके पास पूछा है ना अरविंद
हाँ देखो दूसरा दृष्टांत भी देखेंगे 188 नंबर यदि वा प्रदीप रोचे यथा प्रमाणाद अवस्थितं चापि अतिरिक्तं न्यूनं वा गृहभाजन विशेषतोऽवगाहश्च अथवा दूसरा दृष्टांत दीपक का है दीपक की किरणें उतनी ही है जितनी की वे है परंतु उनमें अधिकता और न्यूनता आ जाती है क्यों आती है तो केवल जो आती है वह केवल घर आदि आवरक विशेष के निमित्त की उपस्थिति में अवगाहन के कारण आती है। अब इसको भूलो अभी हम देखते हैं हमने एक बल्ब जलाया और उसके ऊपर ऐसा कुछ ढक दिया तो जितना ढका है तो दीपक का प्रकाश कितना फैलेगा उसके अंदर अब वो निकाला हमने और ये रूम है हमारी पूरी तो ये सब जगह पैक बाहर नहीं जा रहा तो अभी वो दीपक का प्रकाश कहाँ फैलेगा पूरे इतने रूम पहले तो बस वो पात्र के अंदर थे हो सकता है बड़ा पात्र लिया तो बड़े पात्र के अंदर फैल जाए तो पात्र के अनुसार उसका फैला हो देखो यहाँ क्या लिखा है कि जो अधिकता या न्यूनता आती है दीपक की किरणों में घर आदि आवरक विशेष के निमित्त आवरक यानी उसको आवरण करना उसको ढकने वाला यानी हमने एक बॉक्स उसके ऊपर रख दिया तो उसके बॉक्स के अंदर ही उसका फैला हो जाएगा और बड़ा हमने कुछ बना दिया पूरा रूम तो उसके अंदर उसका फैला होगा
यहाँ पे ये बताते हैं कि वो आवरक जो है वो निमित्त
है
और जो किरण के जो फैला हो रहा है वो उसके
उसके अपने से
स्वयं के कम होने का है उस समय आवरण और जिस समय बड़ा होने का है उस समय
यहाँ क्या क्या निमित्त की उपस्थिति निमित्त की उपस्थिति बताए परंतु होता है तो अपने स्वयं के कारण भावार्थ दीपक को जैसे भी छोटे या बड़े आवरक का निमित्त उपस्थिति रूप, उपस्थिति ने उसकी हाजिरी रूप, तो आवरक किसको कहना, जिसमें दीपक रखा जाए वह पात्र, जैसे मिलेगा वो निमित्त मिलेगा, दीपक का प्रकाश उसी क्षेत्र अनुसार निज अवगाहना को अपने कारण से प्राप्त, वो अपने कारण से, उसने रोक रखा ऐसा नहीं है, निमित्त के कारण से नहीं।
ये हालांकि सरदार जी गुरुदेव श्री की स्टूडेंट थे, मतलब उनके फॉलोअर थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से इसको ग्रास्प किया, इसलिए हमेशा दो दिन की भिन्नता बताकर एक दिन दूसरे दिन का कार्य नहीं करते, इस बात को उन्होंने विषय को
गुरुदेव के शिष्य थे ये सरनाना जी, बहुत पहले लिखा हुआ। अब तीसरा दृष्टांत, एक सौ नवासी देखो, अंशा नाम अवगाहे दृष्टांत स्वांश संस्थितं ज्ञानम अतिरिक्तं न्यूनं वा अंशों के अवगाहन में यह दृष्टांत है कि ज्ञान गुण जितना भी है वह अपने अंशों में, ने अभी गुण के अंश क्या है, अविभाग प्रतिच्छेद, पहले तो देशांशों की बात, प्रदेशों की बात बताई, अब ये गुणों के अंश ने अविभाग प्रतिच्छेदों की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान गुण जितना भी है वह अपने अंशों में स्थित है, यानी अविभाग प्रतिच्छेदों में स्थित है, वह जो कभी कमती कभी बढ़ती होता है वह केवल ज्ञेय पदार्थ का आकार धारण करने से होता है। अब यहाँ आकार यानी शेप नहीं समझना, ज्ञेय पदार्थों की विशेषताओं को जान लेना, उसका आकार धारण करना, जितना बड़ा ज्ञेय है उतना ही बड़ा ज्ञान का आकार हो जाता है, यानी वो तो केवल ज्ञान बहुत बड़ा आकार वाला है ऐसा नहीं, वो तो जो असंख्यात प्रदेश ही रहेगा, वो कई जीव के यानी जो शरीर देह की अवगाहना उससे बाहर तो नहीं फैलेगा, यानी उसकी वो अवगाहना मत लेना, वो आकार मत लेना यहाँ, यानी जितने ज्ञेयों को जानेगा उतने वो ऐसा ज्ञेय आकार हो जाता है। वास्तव में ज्ञान गुण के अंशों में न्यूनाधिकता नहीं होती, भावार्थ कम ज्यादा जानने की अपेक्षा से है, काम करने की ताकत की अपेक्षा से है, वस्तु रूप में नहीं। गेय को जानने से गेय का फोटो नहीं आता, आंखवत जानता है, गेय के कारण भी नहीं जानता, आंख क्या करती, दूर रहकर वो जान लेती है बस, वैसे ही एक गेय को जान लेता है, अभी आंख में जैसे जानने का कार्य तो उसका रूप रंग सभी जान लेता है, ऐसे गंध को जाना, सुगंध को दुर्गंध को जाना, तो उसको भी आकार कहेंगे।
यहाँ ये बात बताया, देखो गेय को जानने से गेय का फोटो नहीं आता, यानी क्या ज्ञान गेय रूप नहीं होता, ज्ञानाकार ही रहता है लेकिन जिसको जान रहा है, क्योंकि जानना 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 कब से चल रहा है, अनादि से चल रहा है, तो अभी किसको जान रहा है, तो घड़ी को जान रहा है, तो उस समय कहेंगे ज्ञान घड़ी रूप हुआ,
आकार हुआ,
यानी क्या है वो किसको जान रहे, तो घड़ी को जान रहे हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वस्तु गेय को जानने से गेय का फोटो नहीं आता, आंखवत जानता है, आंखवत जानता है आंख क्या करती है, सामने आग लगी हो या कोई एक्सीडेंट हो गया तो आंख क्या करती है, बस देखने के लिए, वैसा ज्ञान जानता क्या था,
गेय के कारण भी नहीं जानता, यानी गेय के कारण ज्ञान नहीं होता है, हम बहुत बार हमने ये सिद्धांत कर दिया,
गेय के कारण ज्ञान, गेय के कारण भी नहीं जानता, तो हम बार बार बता देना घड़ी में कितने बजे, तो बोलते 3:30, देख के बोला कुछ नहीं, अपने से हुआ था ज्ञान तो ये है कि के कारण भी नहीं जानता। तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है कि नहीं करना है इस तरह से लेता है। तो कहते उस समय के स्वकाल की योग्यता से जानता है, जानन रूपी जो आत्मा है उसका वो जानने का उस समय वो काल था कि ये जानने का कह रहे हैं उस समय के स्वकाल की योग्यता से जानता है। तो अच्छा नहीं
यानी वो ज्ञान की ताकत बता रहा है कितना जान रहा है क्या जान रहा है, यानी वो ज्ञान का ऐसा शेप अवगाहना बड़ी नहीं हो जाती, भले उसको आकार कहेंगे उन तो ज्ञेय को जानने की अपेक्षा उसका आकार कहाँ है। अभी इसके लिए 190 में देखेंगे श्लोक, तदिदं यथा हि संवेद घटम परिच्छिन्द दिहैव घटमात्रम् यदि वा सर्वं लोकं स्वयमवगच्छत् च लोकमात्रं स्यात्। दृष्टांत इस प्रकार है कि जिस समय ज्ञान घट को जान रहा है उस समय वह घटमात्र है, अथवा जिस समय वह संपूर्ण लोक को स्वयं जान रहा है उस समय वह लोकमात्र है, लोकमात्रं स्यात्। स्वयं अवगच्छत यानी स्वयं जान रहा है, भावार्थ घट को जानते हुए समग्र ज्ञान घटाकार में ही परिणत होकर उतना हो जाता है, यानी घट को जान रहा है बस। उसको कहने के लिए घटा यानी वो ऐसा नहीं कि ज्ञान छोटा हो रहा है या घट के शेप का हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं लेना उसके। ये भाषा अलग है परंतु उसका सही अर्थ समझना। और समग्र लोक को जानते हुए वह लोक प्रमाण हो जाता है, तो क्या पूरा ज्ञान लोक में फैल जाता है क्या? नहीं, हाँ वो पूरे लोक को जानता है। तो ज्ञान कितना है ये तो लोक प्रमाण है, ऐसा भी कहेंगे कहीं? ऐसे ना ज्ञान गे प्रमाण है, गे लोकालोक है, इसलिए ज्ञान लोकालोक प्रमाण है, ऐसा भी कहने की पद्धति भावार्थ। पर्याय में ज्ञान के पूर्ण जानने की ताकत का नाम लोकाकार है, यानी लोकालोक दोनों ही ले लेना उसमें, और घट को जानने का नाम घटाकार है, यानी जानने का ही नाम उसका आकार है। समय समय के स्वकाल की योग्यता से जानता है, ज्ञेय के या निमित्त के कारण से नहीं, यानी वो कितना जानने की ताकत है उसकी अपेक्षा उसको हीनादिक को जानता है। अब 191 न घटारे न घटाकारे विचित शेषांशानां निरन्वयो नाश लोकाकारे विचित नियतांशानां न चासदुत्पत्ति। घटाकार होने पर ज्ञान के शेष अंशों का सर्वथा नाश नहीं होता। थोड़े अंशों में जान लिया ना तो कि बाकी के अंशों का नाश होगा, तो कहते नहीं। और लोकाकार होने पर नियमित अंशों के अतिरिक्त उसमें नवीन अंशों की उत्पत्ति भी नहीं होती। आकार का अर्थ फोटो का नहीं जानने का है, आकार ही नहीं जानना बस, नहीं तो उसका शेप या उसका चित्र ऐसा मत समझना। फोटो नहीं उसका चित्र नहीं बनता है अंदर, उसका जानने का कार्य हो जाता है। 192 किन्त्वस्ति च कोऽपि गुणो अनिर्वचनीय स्वतः सिद्ध नाम्ना च गुरु लघुरिति गुरु लक्ष्य स्वानुभूति लक्ष्यो वा। किन्तु उन गुणों में एक अगुरु लघु नामक गुण है, वह वचनों के अगम्य है, इन्हें वचनों से वो कहा नहीं जा सकता। स्वतः सिद्ध है, उसका प्रत्यक्ष तो सर्वज्ञ को होता है, यानी सर्वज्ञ भगवान उसको प्रत्यक्ष जानते हैं। परम गुरु है ना, गुरु लक्ष्य लिखा, पर अनुभव से छद्मस्थ भी निश्चय कर लेता है, यानी छद्मस्थ भी अनुभव से निश्चय कर लेता है कहो, या उसको हम कहते हैं आत्मा में इतने गुण हैं, तो हम आगम से पढ़ते हैं और फिर उसका निश्चित जान लेते हैं उसको भावार्थ। अगुरु लघु गुण हर एक पदार्थ में जुदा जुदा रहता है, अपना अपना है हर एक का। उस निमित्त से किसी भी शक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। जो शक्ति जिस स्वरूप को लिए हुए है वह सदा उसी स्वरूप में रहती है। इसी को अवस्थितपना कहते हैं। अवस्थित नहीं वैसा का वैसा, उतना का उतना रहेगा। इसलिए ज्ञान गुण में तरतमता होने पर भी, ज्ञान गुण में नहीं उसके पर्याय में, उसके अंशों का विनाश नहीं होता है। विशेष में गुणांशों की हानि वृद्धि होने पर भी सामान्य में, विशेष में नहीं पर्याय में, पर्याय में गुणांशों की हानि वृद्धि होती क्योंकि हमने वो हर पर्याय में हीना दिखता होती रहती है। और वैसे भी हमने षडगुणी हानि वृद्धि की भी बात बहुत बार देखी है। तो कहते कि गुणांशों में हानि वृद्धि होने पर भी सामान्य मैंने गुण में उतने के उतने अंश बनाए रखना अगुरु लघु गुण का काम है। यानी उतने अंश तो हमेशा बने रहे, यह प्रत्यक्ष केवली गम्य है। यानी गुणों में उतने तो अंश, जैसे द्रव्य में प्रदेश उतने के उतने रहते हैं, वैसे गुण में अपने अपने जो अनंत अंश है वो तो हमेशा कायम रहते हैं। पर्याय में वो हीनाधिक होते हैं, प्रकट होते हैं, उसकी बात अलग। वहाँ ये अलग है, यहाँ अंश के बारे में है ना। वो तो एक गुण दूसरे गुण,
एक सामान्य गुण है जो एक गुण दूसरे गुण रूप में होता है, उसकी बात चल रही है। दूसरे गुण
दूसरा भी असामान्य ही है, परंतु वो गुणांश हमेशा कायम रखने वाला गुण है। वो गुण अलग है, एक ही नाम के अनेक गुण हो सकते हैं।
अभी यहाँ किसकी बात चल रही है, सब कुछ
वो तो अंश वाला है, हानि वृद्धि वाला, परंतु पर्याय में हानि वृद्धि होने पर भी गुण के जो अविभागीय अंश है वो तो हमेशा उतने के उतने ही रहेंगे। ये बात बताने वाले, जैसे हमने क्या देखा, प्रदेश उतने के उतने रहते हैं और आकार हीना अधिक होता है, उगाहना चेंज होती है। ऐसे यहाँ पर गुण के अंश उतने के उतने रहने पर भी पर्याय में जो कम अधिक ताकत रहती है वो हीना अधिक हो जाएगी। गुण में तो अंश तो हमेशा बने रहेंगे। यह प्रत्यक्ष केवली गम्य है, यानी जो गुण के अंश कायम रहते हैं वे केवली गम्य है, वो केवली जानते हैं उसको, क्योंकि वो तो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद को जानेंगे। हम तो ऐसा नहीं जानेंगे इतने अविभाग प्रतिच्छेद है, अभी थोड़े कम हुए, अभी कम में ज्यादा है, ये हम नहीं कह सकेंगे। जीव के केवली होने पर सब प्रकट हो जाते हैं, इस अनुमान से यह पता चलता है। हम अनुमान से जानेंगे कि जो गुण के अंश है, जो हम कहें अमर्यादित विकास हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है पर्याय में। गुण में था तभी पर्याय में प्रकट हुआ, इससे पता चलता है। गुण में थे तो पर्याय में प्रकट हुए। हम हमेशा कहते ना, जो है प्राप्त की प्राप्ति होती है, जो है अंदर में सामर्थ्य वही प्रकट हुआ, बाहर से तो इन आने वाली नहीं, कहीं से आ थोड़ा ही गए है। इस स्वानुभव अनुमान से प्रत्यक्ष ख्याल आता है, वो स्वानुभव में और अनुमान से वो ख्याल में आ जाती है। फिर शंका 193, 194, 194 ननु चैवं सत्यर्थात् उत्पादादि त्रयं न संभवति अपि नोपादानं किल कारणं न फलं तदनन्या। किसी शक्ति का कभी नाश भी नहीं होता और न नवीन कुछ उत्पत्ति ही होती है। यदि ऐसा माना जावे तो, अब ये शंका करके शंका, तो गुणों में उत्पाद वे द्रव्य नहीं घट सकते हैं, न उपादान बनता है यानी ध्रुव बनता है, न कोई किसी का कारण ही बन सकता है, न फल ही कुछ हो सकता है, क्योंकि उपर्युक्त कथन से तुम गुणों को सदा एक जैसा ही मान चुके हो। समझ में आती बात, ये किसी शक्ति का कभी नाश नहीं होता, उत्पन्न नहीं होती, ये गुण और गुणांश में कंफ्यूजन कर रहा है, उसकी शंका और भी चल रही है। 194 में भी वही शंका चल रही है आगे। अपिच गुण स्वांशानाम अपकर्षे दुर्बल कथम न स्यात् उत्कर्षे बलवानिति दोषोयम् दुर्जयो महानिति चे। दूसरा भी दोष कह रहे हैं, महान दोष क्या है? दूसरी बात यह है कि हर एक गुण के अंशों की कभी न्यूनता भी प्रतीत होती है, ऐसी अवस्था में गुण दुर्बल कैसे नहीं होता है? अब ये गुण कोई कम शक्ति वाला सूक्ष्म पतला कैसे नहीं होता, और कभी गुण में अधिकता भी प्रतीत होती है, ऐसी अवस्था में वह बलवान यानी सशक्त मोटा कैसे नहीं होता है? यह एक महान दोष है, इसका निराकरण कुछ कठिन है। यह प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए था, इसका निराकरण कठिन है, ये तो स्वयं वो प्रश्नकार कहा कह रहा है। इसमें दंड यानी फुल स्टॉप चाहिए।
क्या इसका निराकरण कुछ कठिन है ऐसा?
इसका निराकरण कठिन है ऐसा शंकाकार कह रहा है। वहाँ क्या प्रश्न चिन्ह दिया है? फुल स्टॉप, अर्थ यही दिया है। अब समाधान 195 की पहली लाइन पढ़े, दो तीन शब्द पढ़ो। परिणामी करना, परिणामी का परिणामी करना हमने किया है पहले, पढ़ेंगे श्लोक। तन्नयतः परिणामी द्रव्यम पूर्वम निरूपितम सम्यक् उत्पादादित्रयमपि सुगटम नित्येतनाभ्यानित्येर्थे। उपर्युक्त जो शंका की गई है वह निर्मूल है, क्योंकि यह पहले अच्छी तरह कहा जा चुका है कि द्रव्य परिणमनशील है। परिणमनशील एक शब्द चाहिए ना? इसलिए नित्य पदार्थ में ही उत्पाद व्यय द्रव्य अच्छी तरह घटते हैं, अनित्य पदार्थ में नहीं घटते। ये बेसिक है, जो नित्य है उसी में उत्पाद व्यय और द्रव्यता घटित हो जाती है। अब इसके लिए भावार्थ फिर खोलकर बता रहे हैं हमको। गुण में पूरा ज्ञान स्थित होगा तभी तो पर्याय में हीनाधिक परिणमन करेगा, यानी गुण में तो उसकी पूरी शक्ति विद्यमान है, सभी अविभाग प्रतिच्छेद है, तो पर्याय में हीनाधिक प्रकट हो जाते हैं। वह हीनाधिक परिणमन ज्ञानावरण कर्म या निमित्तों के कारण नहीं होता, कथन में भले हम कहेंगे वहां पर उसका अनुभाग ज्यादा या अनुभाग कम हुआ, या जब आवरण ज्यादा हुआ तो ज्ञान कम हुआ, ये तो निमित्त के लिए बताया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से ही होता है। तो कहते हुए जो ज्ञान का हीनाधिक परिणमन है वह ज्ञानावरण कर्म या अन्य निमित्तों के कारण नहीं होता, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है ना, अभी अभी तो ऑपरेशन टेबल पर लिए हैं, तब बोल रहा था अभी एनेस्थेसिया दिया, मॉर्फिया लगा, इंजेक्शन, तो बेहोश हो गया, ऑपरेशन किया तो भी पता नहीं चले तो उसके कारण हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको कहते ये निमित्त है, निमित्त से कुछ नहीं होता। ज्ञान अपनी स्वयं की योग्यता से ही इंद्रूप परिणमित होता है, तो उस समय यथायोग्य उचित निमित्त रहता है। हाचे यहाँ कहते हैं निमित्त के कारण नहीं होता, किंतु वस्तु के स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव के कारण होता है, यानी ज्ञान का जो कोई परिणमन हो रहा है वह वस्तु के स्वतः सिद्ध स्वभाव है, उसके अनादि अनंत एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है, वो स्वयं की अपनी योग्यता से स्वकाल में प्रकट होगी ही होगी। तो कहते वस्तु के स्वतः सिद्ध परिणमन स्वभाव के कारण होता है और स्वकाल की योग्यता से होता है, प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल की योग्यता से होता है, ऐसा ग्रंथकार का आशय है। इसी को अनवस्थित कहते हैं। ये अनवस्थित कहाँ है? तो पर्याय में। गुण की अपेक्षा देखो तो अवस्थित है, शंकाकार ने तो उसी को पूरा अवस्थित कह दिया था, उसकी शंका का शंकाकार की शंका ही ऐसी थी और वो गुण को ही हीना दिख कह रहा था। यहाँ गुण कायम रहते हुए पर्याय में हीना दिखता होती है। दूसरा आशय उनका ऐसा है कि पर्याय में हीना दिख होने पर भी वस्तु में गुण रूप से हर समय पूरा स्थित रहता है, इसी को अवस्थित या नित्य कहते हैं। यानी गुण में तो पूरी शक्ति विद्यमान है, सभी अविभाग प्रतिच्छेद, और उसको अवस्थित या नित्य कहेंगे। यदि यह न माना जाएगा तो परिणमन किसके आधार पर होगा? कुछ है ही नहीं तो किसके आधार से वो परिणमन होगा? उसका कुछ अंश प्रकट होता है, उसी को तो हम यह पर्याय कहते हैं, परिणमन कह रहे हैं। मोक्ष का पुरुषार्थ ज्ञानी किसके आश्रय से करेंगे? गुण में भरा है तो पर्याय में पुरुषार्थ के द्वारा प्रकट किया जाता है, उसको कहेंगे पुरुषार्थ के कारण उसने प्रकट किया। वो भी हर एक गुण की अपनी अपनी, यहाँ तो द्रव्य की एक मिली जुली पर्याय कहने में आती है, हर एक गुण की अलग अलग नहीं लेते हैं। तो कहते हैं तो गुण में जो भरा है, जो शक्ति है, वो पर्याय में कैसे प्रकट होती है? तो पुरुषार्थ के द्वारा। वो पुरुषार्थ वाली भी पर्याय ही है ना, वो भी फिक्स है। उपदेश है ना, वो उसका कारण बताया। पांच समय तो सभी होगी, स्व समय पर होगी, उसका समय भी निश्चित है, पर्याय भी निश्चित है, निमित्त भी निश्चित है, पुरुषार्थ भी निश्चित है। तो एक समय की मुख्यता से कथन किया जाता है, परंतु पुरुषार्थ को उपादान में लेना है, इसलिए हम पुरुषार्थ से, क्योंकि इम्पोर्टेंस पुरुषार्थ को देना है, इसलिए उसकी बात है। जब हम कहेंगे स्व समय पे काल लब्धि से प्रकट होगी, तो जब हमारा काल आएगा तब होगी, ऐसा जीव स्वच्छंद बना देते, इसलिए पुरुषार्थ का नाम रहा। पांचों समय इक्वल होते हैं, यानी स्व समय पर भी पुरुषार्थ से होगा, बिना पुरुषार्थ के होगा ऐसा नहीं। और पुरुषार्थ बहुत किया और काल नहीं आया, तो कहते कि वैसा पुरुषार्थ भी नहीं होगा अगर काल नहीं आया होगा, उस जाति के उस पर्याय संबंधी पुरुषार्थ नहीं होगा। यानी उस इतना सहज है और बिल्कुल निश्चित है सभी को। हम कहते पुरुषार्थ की कमी, पुरुषार्थ की कमी, ऐसी बात करते हैं। पुरुषार्थ की कमी नहीं, अन्य जाति का पुरुषार्थ हो रहा है, राग का पुरुषार्थ हो रहा होगा, भेद ज्ञान संबंधी पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे पुरुषार्थ की कमी है। यानी अन्य चीजों की रुचि पड़ी है, तो उसमें वो पुरुषार्थ उसमें लगा, जो पर्याय हो रही है उसका पुरुषार्थ तो हो ही रहा है, बिना पुरुषार्थ के वो पर्याय भी नहीं हो रही है। जैसे मिथ्यात्व का पुरुषार्थ चल रहा है ऐसा कहेंगे, राग का पुरुषार्थ चल रहा है। क्या हुआ? ये कोई कहता ना कि हमारा लीनता का पुरुषार्थ नहीं हो रहा। देखो यहाँ तो हमें तो महानता किसकी भाषित होनी चाहिए और किसकी हो रही है, लीनता का पुरुषार्थ नहीं हो रहा इसलिए दुखी हो रहा है। तो लीनता का पुरुषार्थ करके क्या चाहता है? समय दर्शन चाहता है, यानी किसकी महत्ता लग रही है? समय दर्शन की, स्वभाव की नहीं लग रही। हाँ पर्याय की, मुझे समय दर्शन प्रकट करना है, मुझे समय दर्शन प्रकट किया, यहाँ पर्याय की मुख्यता हो रही है। हमें स्वभाव की मुख्यता हो जाना, यही पुरुषार्थ है ना। पर्याय तो सुनिश्चित है कि नहीं अपने द्रव्य में, और जब होनी वही है, और उस समय वैसा पुरुषार्थ होगा कि अभी अभी पर्याय आगे हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यानी ये पूरी जो सहजता है उसको ख्याल में लेना है, स्वीकार करना, यही पुरुषार्थ। यानी निश्चिंत होना चाहिए। यहाँ तो हमें चिंता लगी रही कि हमारा नहीं हो रहा है, क्या करें, नहीं हो रहा है क्या, यानी बार बार उसके बारे में हम दुखी हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब कैसा ऐसा विचार आ सकता है, अरे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे मेरी रुचि अभी अन्यत्र कहीं पड़ी है। यानी उसका कारण भी अपने को पता है कि अपनी रुचि अभी जितनी यहाँ चाहिए गायक की महत्ता आनी चाहिए अभी इतनी नहीं है, अन्य चीजों की रुचि कहीं ना कहीं पड़ी है तो बार बार उपयोग वहां चला जा रहा है। परंतु यहाँ पर हम उसमें भी बेरियान लगा सके, ये जो राग भाव है अपना कोई लगाव है अन्यत्र, वो भी उसका भी मैं जानने वाला, वो मेरे से भिन्न है, उसी के साथ भेद ज्ञान कर लो ना। इस ये भेद ज्ञान की धारा ही चलेगी और वही जाके अंत में सक्सेसफुल होगा, यानी मायूस होने की बात नहीं है।
मूल बात ये है कि हमारे को अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हमारा निरंतर
लक्ष्य प्रयोग पर्याय की तरह नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ,
अपने स्वभाव की,
बिल्कुल स्वभाव की आनी चाहिए,
जाए
स्वभाव की महिमा आना ही वो पुरुषार्थ है ना, तो सहज रूप से बारंबार उस तरफ लक्ष्य चला जाए। स्वभाव की मुख्यता होनी चाहिए, स्वभाव तो कायम है, वो एक सदृश है, उसकी महत्ता आ जाए तो वहाँ पर्याय जाएगी कहाँ, छोड़कर चली जाएगी क्या, कि अपना समय बदल कर ना हमको पहले लाने की चिंता है ना, वो तो अरे नहीं होगी तो हम स्वभाव की तरफ देख रहे हैं और हमारी परिये चले होकर चली जाए तो फिर ऐसा। हो गया अपना समय, हो गया कहाँ तक आए थे, पर्याय में पुरुषा द्वारा प्रकट 196 कल पढ़ेंगे। जवानी के ज्ञान पे सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देता।